था, तो मैं, मुझे वो जगह अच्छी लगती है, तो मैं वो घर देखने के लिए गई. एंड वी वर वेरी मच इन टू द होम. एंड देन बहुत ही खूबसूरत आदमी, दे आर इंग्लिश पीपल जो इस घर को बेच रहे हैं. तो जब हम, बंदा बहुत प्यारा था, उसकी दो बिल्लियाँ थी, तो मेरे बेटे ने उससे कोई बात की, तो ही सेड यस माय इन लॉज यूज टू लिव इन द बेसमेंट, एंड इन लॉज यूज टू लिव इन द बेसमेंट. एंड अच्छा, देन तो ही सेड दे डाइड, एंड आई सेड ओ, तो मेरे बेटे ने भी कहा ओ. तो बंदा बहुत प्यारा था, मेरी उम्र का ही था, आप समझ लीजिएगा. तो वो कहने लगा नो नो दैट्स ओके, इट्स जस्ट लाइफ, यू नो एवरीबडी हुज ओल्ड हैज टू पास. वहां से तो हम निकल के आ गए. मेरा बेटा कहता वी डोंट वॉन्ट टू बाई दिस होम. ही वॉज सो क्रूअल, हाउ कैन ही से दैट इज, इट इज जस्ट एज दैट दे हैड टू डाई. तो बहुत साफ जिंदगी इसी का नाम है. वी, अल्लाह ताला का ऐसा खूबसूरत निज़ाम है, नई पनीरी आती जाती है, पुराने लोग निकलते जाते हैं, और अल्लाह करे सेहत तंदुरुस्ती के साथ ही निकलते चले जाएं तो बहुत अच्छा. मगर जिस सिस्टम में मैं और आप रह रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम. तो मैं जब इस सिस्टम का जिक्र कर रही थी, तो पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर एक्ट्रेस ज़ेबा साहिबा, आपको पता ही है कि इन्होंने मोहम्मद अली साहब से शादी कर ली थी, शी वॉज सिक, हार्ट कंडीशन शायद उनको हुई, उनको लाहौर के एक हॉस्पिटल में लेके गए, और उसके बाद फिर उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट था वो इस्लामाबाद पिंडी में था, फिर पिंडी मेडिकल पिंडी आर्मी हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया गया, बिकॉज शी कुडंट ट्रैवल बाय एयर, तो फिर एम्बुलेंस उन्होंने लेके ट्रांसफ़र किया. जिस सिस्टम में मैं और आप रह रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम. ऑफकोर्स मैं, आप, हम तमाम की लाइबिलिटीज़ हैं, और बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि, और वाकई मैं भी आप ही की तरह से हूँ कि कुछ होना ही नहीं, मगर साहब यू नेवर नो, दिस इज़ वेरी अनसर्टन लाइफ. ऑफ कोर्स जिनसे हम मोहब्बत करते हैं दुनिया में, सच छूट अपने भाई बहनों तक को हम छोड़ते चले आ रहे हैं जिस औलाद की खातिर, जस्ट टू प्रोटेक्ट देम, ताकि उनके सरों पे छतें कायम रहें. डोंट बाय बिग प्लान्स, बाय समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज मस्ट, यू मस्ट बाय दैट. प्रदीप जी का मैं नंबर देती हूँ, सन लाइफ के साथ आप हैं, और आज हम इसी की बात करेंगे, अफोर्डेबल प्लान की बात करेंगे. प्रदीप जी का नंबर 4168945872. तो मुझे कहने लगे जी मैं कागज़ के ऊपर आपकी सहूलत के लिए नाम लिख देता हूँ. मैंने कहा आपको क्या पता, मेरे तो सामने नाम लिखा होता आपका. प्रदीप जी, सन लाइफ के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. गुड आफ्टरनून साहब, वेलकम टू द शो.
थैंक यू वेरी मच आरिफा जी, थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, एक बार फिर से मौका दिया आपने आप लोगों के सामने बैठने का.
आप सर अपना और कंपनी का तारफ कराइए, और आज के टॉपिक का भी तारफ करा दीजिए.
जी जी जी. तो जैसा कि मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं, 22 साल से मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हूं, और मेरी जो मेन कंपनी है वो सन लाइफ है. 1865 से ये एग्जिस्टेंस में आई, फुल्ली कैनेडियन कंपनी. और इसकी खासियत ये आरिफा जी कि ये नॉर्थ अमेरिका में वाहिद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशंस में शुमार किया गया है. तो सीधा सा इसका मतलब है कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बहुत तरह के प्लान हैं, और जैसा अभी आप फरमा रही थी, कस्टमर सर्विस सुपर्ब. हर शख्स के पास एक अपना एडवाइजर होता है, और एडवाइजर की डेथ हो या एडवाइजर रिटायर हो जाए या कंपनी छोड़ जाए, तो उसको कंपनी नया एडवाइजर देती है. तो यानी हर कस्टमर जो है एक साथ उसका पर्सनल रब्ता रहता है उसके अपने एडवाइजर से, और इसी का फायदा होता है कि कभी जब डेथ आती है, क्योंकि मौत तो हर एक के पास आनी है, जब ऐसा मौका आता है तो फैमिली को बहुत स्मूथली क्लेम मिलता है. तो मैं 22 साल से सन लाइफ में, एक बहुत बड़ा सबब रहने का ये भी है कि कस्टमर सर्विस और स्मूथ क्लेम टाइम, कभी भी क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है. रिफा जी, ये ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं मांगती, जैसे क्लेम आता है उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर देती है, और 5 साल से पुरानी पॉलिसी कोई भी हो तो 5 बिजनेस दिनों के अंदर ये पे करती ही करती है. तो दिस इज हाउ दिस कंपनी एक्ट्स. और आपने कहा कि आज का टॉपिक, आज हम बात करेंगे आरिफा जी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस द मोस्ट अफोर्डेबल वन. आप अपना नंबर दीजिए और थोड़ा हमें इस पॉलिसी के बारे में बताइए.
मेरा नंबर है आरिफा जी 4168945872. तो इसके बारे में इस तरह से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान जब इंट्रोड्यूस किए गए तो वो फुल लाइफ या परमानेंट लाइफ प्लान होते थे, जिंदगी भर चलते थे, एक ना एक दिन क्लेम पे करते ही करते थे, तो लिहाजा उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी कस्टमर्स के, और सब कस्टमर्स को उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता था। तो इसके लिए फिर कंपनीज ने कहा भी ये तो ठीक है कि उनको एक ना एक दिन पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर किसी की जरूरत आज है, उसके बच्चे हैं, उसकी मॉर्गेज ज्यादा है या बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कैसे अफोर्ड करेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक टर्म प्लान से इंट्रोड्यूस करेंगे। टर्म का मतलब एक टाइम पीरियड या मियाद। तो ऐसे प्लान्स जो पूरी जिंदगी नहीं चलेंगे, 60 साल की एज तक, 65 साल की एज तक, 75 साल या आजकल इंट्रोड्यूस में 85 साल तब तक चलेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये प्लान्स जो हैं, चूंकि ये पूरी जिंदगी नहीं चलने वाले, इसलिए उनकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर उस दौरान किसी की डेथ हो जाए तो फैमिली कवर्ड भी है,
फुल पेमेंट
होगा, है ना। तो ये जो है, ये इस हिसाब से ये टर्म प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए।
अपना नंबर दीजिए और ये बताइएगा क्या फैक्टर्स हैं जो टर्म इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाते हैं।
बिल्कुल, तो एक तो ये फैक्टर मैंने आपको बताया कि एक पार्ट, एक लाइफ का एक हिस्से में चलते हैं, और दूसरी तरह से कंपनियों ने फर्दर उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए एक और चीज की कि भाई टर्म प्लान तो ठीक है, ये पॉलिसी मान लें आपकी 75 या 85 साल तक चलेगी, लेकिन अगर आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है फर्स्ट 10 ईयर्स की, फर्स्ट 15 ईयर्स की, फर्स्ट 20 ईयर्स की या 30 ईयर्स की, तो उन्होंने उस प्लान को भी इन हिस्सों में बांटा, तरह तरह से डिफाइन किया कि अगर हम 10 साल का प्लान लेंगे तो वो सबसे सस्ता होगा, क्योंकि वो 10 साल में आपको कवरेज देगा, उसके बाद भी देगा, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है सबसे सस्ता होगा। इसी तरह से 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी और जरूरत के हिसाब से ऐसा टर्म प्लान लें जो कि आपको सबसे ज्यादा कवर करे और सबसे कम पैसों में आपको कवर करे, क्योंकि इस समय आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है।
सही। प्रदीप जी, एक दफा फिर से आप अपना नंबर दीजिएगा और मुझे ये बताइएगा, फर्ज करें एक आदमी की 10 साल या 15 साल की टर्म लैप्स हो गई, खत्म हो गई, तो क्या वो उसको रिन्यू कर सकता है।
बिल्कुल, नंबर मेरा है आरिफा जी 416-894-5872, 416-894-5872। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, अगर किसी ने 10 साल का प्लान लिया ये सोच के कि आज भाई बहुत सबसे सस्ता प्लान ही ले लूं मैं, तो क्या होता है 10 साल के बाद, पहली बात तो वो 10 साल का पीरियड खत्म हुआ, रिन्यू हो सकता है प्लान, लेकिन उसका रेट प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, बहुत का मतलब 10-15-20-30% नहीं, कई गुना बढ़ता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिकनेस ज्यादा हो गई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिकनेस हो गई। और दूसरी बात क्या है कि जब रिन्यूअल का टाइम आता है आरिफा जी, तब कंपनी उसके हेल्थ के हवाले से कुछ भी सवाल नहीं कर सकती।
अच्छा, 10 साल के बाद अगर मैं रिन्यू कराऊं तो हेल्थ क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, मगर प्रीमियम विल बी मोर,
प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। तो कई बार लोग
डू दे सेंड फॉर द टेस्ट,
नहीं उसमें क्या होता है किसी की अगर मान लें, क्योंकि नया प्लान जिसमें कंपनी आपके हेल्थ के बारे में पूछताछ करती है तो सस्ता होता है, तो अगर किसी की हेल्थ सही है तो उसको पुराने प्लान को छोड़ के वो नया प्लान ले सकता है हेल्थ के टेस्ट के बेसिस पे, है ना। लेकिन अगर किसी की हेल्थ कैसी भी हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो जाए उसको जानलेवा, लेकिन वो कंपनी उसको मना, रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती।
वाओ,
तो ये रिन्यूएबिलिटी होती, 10 साल के बाद प्लान वो रिन्यू कर सकता है। तो इसीलिए जब भी हमारी मुलाकात होती है लोगों से तो पहले हम उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, वे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम क्या करते हो, तुम्हारी वाइफ क्या करती है, तुम्हारे पास मॉर्गेज कितनी है, बाकी घर की रिक्वायरमेंट कितनी है, बेटियां हैं तो उनकी शादी का क्या प्लान है तुम्हारा, वगैरह वगैरह, ताकि एक उनकी रिक्वायरमेंट्स का पूरा एक खाका सामने आ जाए।
मगर आप बजट को भी मद्देनजर,
बजट को भी, तो पहले एक तो पूरी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि भाई अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कितना अफोर्ड कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है आरिफा जी कि अगर जरूरत मान लें 10 लाख है लेकिन अफोर्डेबिलिटी 5 लाख है, तो 5 लाख से शुरू करो, ताकि कुछ जो कवरेज है, एक पॉजिटिव आप जो स्टेप लेंगे वो पॉजिटिव स्टेप होगा बनिस्बत जीरो के।
सर, आप अपना नंबर एक दफा फिर से दे दीजिएगा। तो ये तो हमने ये भी बात कर दी कि रिन्यू हो सकता है लैप्स होने के बाद, अपग्रेड कैसे हो सकता है, क्विकली ये बताइए और अपना नंबर भी दीजिए।
बिल्कुल, नंबर है 416 894 5872 आरिफा जी, अपग्रेड करने के लिए सन लाइफ ने कई ऑप्शंस दिए हैं। अगर किसी ने सबसे सस्ता 10 साल का प्लान लिया है और उसकी एज 65 से कम है, 5 साल के भीतर उस प्लान को वो 20 या 30 साल का बना सकता है बगैर किसी क्वेश्चन के। स्टैंडर्ड उसको प्रीमियम रहेगा और कोई सवाल नहीं। तो इसमें क्या है कि आप टर्म टू टर्म उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि उसको परमानेंट प्लान बना लेते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है कि जो हमारे इमिग्रेंट्स आते हैं आरिफा जी, तो सबसे पहले आप देखें क्या होता है, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, उन्होंने घर भी लिया हुआ होता है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस समय हाई मॉर्गेज और बच्चे छोटे। कुछ साल बाद वो ज्यादा सेटल हो जाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और मॉर्गेज कम हो जाती है। तो अगर वो अपग्रेड करके प्लान को फुल लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन कर सकते हैं, विद सम अंडर सम कंडीशंस। और कई बार पूरे प्लान को आप अपग्रेड लाइफ लॉन्ग नहीं बनाना चाहते, जैसे आपके पास 5 लाख का प्लान है, आपको लगता है कि मैं 1.5 लाख का कर लूं वो ठीक रहेगा, तो आप 1.5 लाख का कर लें, वो पार्ट कन्वर्शन का भी ऑप्शन है उसमें। और ये भी ऑप्शन है कि बचे हुए प्लान को ओरिजिनल फॉर्म में चलने दें या उसको ड्रॉप कर दें, दैट ऑल्सो इज अंडर योर कंट्रोल कंप्लीटली।
बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और इस पे जो क्लेम होता है उस पे इनकम टैक्स तो नहीं होता ना?
बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं होता। अगर हम बेनिफिशियरी का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने अपनी वाइफ का एज अ बेनिफिशियरी नाम लिखा है, तो मेरे जाने के बाद उसको पैसे पूरे टैक्स फ्री मिलेंगे। और दूसरी चीज है आरिफा जी, इसमें ये क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि कोई ये नहीं कह सकता मेरी बीवी से कि प्रदीप जी ने हमसे कुछ उधार लिया था, या उधार भी नहीं लिया था तो हमारे बड़े दोस्त थे, उन्होंने कहा था जाएंगे तो उसके बाद अपने कुछ पैसे छोड़ जाएंगे।
नोबडी कैन क्लेम दैट मनी,
नाइदर क्लेम कर सकता है, और ये क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होता है, कोई किसी तरह का उस पे क्लेम नहीं कर सकता, हैरेस नहीं कर सकता। जो फैमिली के मन में आए वो करे।
सर आप अपना नंबर दे दीजिएगा और अगली मुलाकात कब है?
416-894-5872। और अपनी नई क्लास में मैं अगले हफ्ते फिर से ट्यूसडे को आ जाऊंगा, है ना, होमवर्क करके।
बहुत शुक्रिया। 416-894-5872 प्रदीप जी का बहुत शुक्रिया। लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस, यू मस्ट लुक एट इट। और आप अपने सहूलत के मुताबिक अपनी मर्जी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, इवन अगर आपके ग्रुप प्लान्स भी हैं, तो गेट अ चांस टू लुक एट व्हाट ही ऑफर्स। नंबर क्विकली दे दीजिएगा,
416-894-5872। और अब माजिद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मौका लगा तो
जी आप ही के तवसू से देखिए हम इतनी खूबसूरत बंदे से मुलाकात करने जा रहे हैं। 4:20 पे वसुतुल्ला खान, रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो बीबीसी जैसे इदारे के साथ लिखते हैं, आप हमारे साथ होंगे 4:20 पे। और आप हमारे साथ रहिएगा। इस दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपके नंबर से वो सवाल जरूर मनोमन पूछूंगी। अगर हम कॉल इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और 15 मिनट में हमने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को पूरा करना होगा। प्रदीप जी का बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी के तवसुत से ही अब हम खबरें भी सुनाया करेंगे, गाने भी सुनाएंगे, लतीफे भी सुनाएंगे। वो एक प्रदीप जी, अगर आपको भी लतीफा आता है लतीफा शेयर करें। एक आदमी था वो ना टुन हो गया,
अच्छा
बिल्कुल टुन हो गया
ठीक।
तो उसके दोस्त वोस्त पकड़ के उसको लेके जा रहे थे और वो एक पुल के ऊपर से गुजरे। जब पुल के ऊपर गुजरे ना तो नीचे पानी बह रहा था, दरिया नदी थी ना, तो चांद का अक्स नजर आ रहा था। वो आदमी टुन था मगर नीचे की तरफ देख के चल रहा था, तो देखा कि पानी के बीच में ना चांद नजर। उसने अपने दोस्त से पूछा ये नजर क्या आ रहा है मुझे, वो कहता चांद है। कहता हम इतने ऊपर आ गए।
यही जो था ना, एक दिन उसने अपने दोस्तों ने चर्स भी पीते थे ये, तो उसने अपने दोस्तों की दावत कर दी जी।
अच्छा,
एक किसी जगह पे उसने दावत कर दी, सारे चर्स सारे उन्होंने खूब
चर्स चढ़ाई हुई।
तो उन्होंने कहा यार कि अब क्या करें, खाने पीने का क्या इंतजाम करें। उसने सोचा कि मैं अपने घर से बकरा चुरा लाऊं, अपना ही बकरा है ना, चोरी करके लेके आता हूँ अपना बकरा और ला के नावे आदि हम खूब याशी से पूरी रात को।
वो रहता था ससुराल में रहता था ना, तो उसने कहा मैं अपने ससुर का बकरा चोरी कर लेता,
चोरी कर लेता हूँ। वो चोरी करके ले गया और ले जाके उसने ना जबाया किया उसको, और सारे दोस्तों ने खूब रच के गोश वोश खाया उसका। जब सुबह ये घर पहुंचता है तो देखता है बकरा तो लगा हुआ है वहां पर रस्सी से बंधा हुआ है, अपनी बीवी को जल्दी बुलाता है, ये क्या हो गया, ये बकरा कहां से आ गया इधर? कहने लगे क्यों, बकरा तो हमारा रात को बंधा हुआ है यहां पर, मगर रात से हमारा कुत्ता गायब है।
वो बेचारा ना अपने ससुराल में घर जवाई था, और आपको पता है घर जवाई जो अपनी माँ का नहीं तो वो बीवी के माँ बाप का कैसे हो सकता है। तो वो बेचारे ने, मगर वो कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, नहीं नहीं दूसरे के लिए कुआं खोद और खुद उसमें जाके गिर के, यानी उसने अपने ससुर का बकरा जिबा किया मगर खा गया कुत्ता,
खा गया कुत्ता।
बहरहाल
माँ बाप को जो ना एक और
वो नहीं नहीं वो ना एक आदमी था तो वो आप जैसा डरपोक सा था, अपनी बीवी से बड़ा डरता था।
अच्छा अच्छा अच्छा,
तो कौन सा ऐसा मर्द है आरिफा जी जो बीवी से नहीं डरता, पहले मुझे आप ये बताएं।
कौन सा शरीफ मर्द है जो बीवी से नहीं डरता?
सभी
अच्छा,
मर्द
बाहर जो क्लाशन को लेके फिरते हैं ना, वो भी घर जाके बीवी, और फिर भी पता नहीं बीवियां कौन सी औरत मार्च लेके चली फिरती हैं। आदमी तो बेचारे बड़े डरपोक है, अपनी बीवियों से डरते हैं।
इस पे बाप आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, मगर आप पहले आप
तो
पहले
वो ना आप जैसा एक आदमी था तो हाँ। वो अपने घर से देर हो गई, रात को 2-3 बजे तक दोस्तों ने घर जाने ही नहीं दिया।
हाँ जी,
खैर अगले दिन वो जब वो दोस्तों से दोबारा मुलाकात हुई, बैठक हुई ना, तो वो ऐसे ऐसे करने मुंह बंद करे, ऐसे करके बार बार मुंह बंद कर ले, तो दोस्त भी आपको पता ही कितने बदतमीज होते हैं, वो भी छेड़ने से बाज नहीं आते।
हाँ जी।
तो दोस्तों ने उसे सवाल किया कि यार कल रात को तुम्हें हमने रोक लिया था बड़ी देर के लिए, तो तुम्हें तुम्हारी बीवी ने तो कुछ नहीं कहा? कहता नहीं, चोर की दाढ़ी में शतीर। कहता नहीं, ये अगले वाले 2 दांत तो मैंने वैसे ही निकलवाने थे।
जब बीवी से डर की बात आपने की ना, वो जब
जी को भी समझ आ गया,
बताइए
तो ये बात
लाइट जो है जल गई।
अब ये देख ले कि वो जब लड़का प्रदीप जी जब जवान होने लगे ना, तो माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है, सबसे ज्यादा माँ को फिक्र होती है तू शादी कर ले, तू शादी, रोज आना खाने के टेबल पे इधर उधर उधर, वो बचता फिरता है मगर जब भी बात होती है कह रहे तू शादी कर ले। तो वो लड़का था एक, उसको उसके साथ यही प्रॉब्लम चल रहा था, तो माँ की बात नहीं मान रहा था, तो माँ ने अपने उसके बाप से कहा कि भाई आप देखें, मैं तो कह के थक गई हूँ इसको, आप कहें कि यार ये शादी कर ले, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो अपने बेटे से उसने कहा इधर आओ भाई, बेटा तू शादी कर ले। तो और शादी क्यों नहीं करते तुम? कहने लगा कि मैं शादी इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे सारी की सारी औरतों से ना मुझे डर लगता है। कहने का इसमें क्या बात है, तू सारी औरतों से डर लगता है तो तू फिर जरूर शादी कर
ताकि तेरा डर निकले।
तो उसने कहा कि तो शादी, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा डर निकल जाएगा। कहने लगे नहीं, मगर सारी की सारी औरतों से डरोगे, सिर्फ एक से डरोगे, बाकी की सारी औरतें अच्छी लगेंगी।
वो ना माजी भाई आपकी इस बात से मुझे याद आया, वो एक आदमी था ना, वो जब उसको छींक आए तो वगैरह ऐसे करके छींक को रोके ना, तो वो एक आदमी सामने बैठा हुआ था, उसने कहा यार तू छींक आ रही है तो खुल के छींक मार, मतलब तू रोक क्यों रहा है। इतनी देर में उसको फिर छींक आ रही थी, उसने फिर ऐसे ऐसे करके छींक को रोक लिया। कहता तू छींक मार, कहता यार मुझे छींक मारना है, बस डर लगता है मेरी, दरअसल बीवी ने कहा था कि जब तुमको छींक आए तो समझना मैं तुमको याद कर रही हूँ। तो वो आदमी कहता
है छींकने को तैयार नहीं।
हाँ, तो वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें याद कर रही है, तो तुम खुल के छींक मारो। हाँ। कहता यार वो मर चुकी है ना। चंद एक स्पॉन्सर का पैगाम देते हैं, आई विल टेक यू टू पाकिस्तान, जहां से बसुतुल्ला खान मेरे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया होंडाई की गाड़ियां, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो होंडाई की गाड़ी लीजिएगा। जनाब भाटिया साहब की 5 अब डीलरशिप हो जाएंगी, दे गॉट ओकविल की डीलरशिप भी उनको मिल गई, इस वक्त 4 रेक्सडेल हुंडई उनके पास है, उनके पास स्ट्रीट्सविल हुंडई है, उनके पास मिसिसागा हुंडई है, जेनेसिस जो इनकी बड़ी गाड़ियां ब्रांडेड मेरा ख्याल है 4x4 जो हैं उनकी मिसिसागा में डीलरशिप है, नाउ ही गॉट द अदर वन, फिफ्थ वन विच इज ओकविल। ये आपको, क्योंकि भाटिया साहब इज नॉट ओनली से यस, गाड़ियां उनका बिजनेस है और ही इज बिन हुंडई सिंस एवर, बट ही गिव्स अ गुड कस्टमर सर्विस. इसके लिए उन्होंने एक शख्स का नाम हमें दे दिया है कि शाह अहमद से आप बात कर लीजिएगा. आप मिसिसागा स्ट्रीट्सविल जिस में भी जाना है, शाह जी को कॉल करके अपॉइंटमेंट सेटअप करें. यू विल बी लुक्ड आफ्टर इन अ वेरी बेस्ट फैशन. और शाह जी का नंबर 416-817-2720, 817-2720 उनका नंबर है. बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपके मुंतजिर होंगे. हमारे आज के प्रोग्राम को मोहम्मद शहजाद सिद्दीकी ने भी तावन दिया. अगर आपने कार की इंश्योरेंस आपको चाहिए, घर की इंश्योरेंस आपको चाहिए, गाड़ी और घर की इंश्योरेंस, एंड ये ई वर्क्स विद ऑल स्टेट कार और होम की इंश्योरेंस के लिए. एंड ही सेज के अगर आपकी दो गलतियां भी हो जाती हैं ना, ऑल स्टेट में ये ब्यूटी है उनकी गाड़ी इंश्योरेंस में, ये टू फॉरगिवेबल मिस्टेक्स हुआ करती होती हैं, तो आप वसुतुल्लाह खान इज रेडी. यस, वसुतुल्लाह खान हमारे साथ आएंगे. शहजाद साहब का नाम मैं आपको, शहजाद सिद्दीकी का नंबर 6472035546. अच्छा, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि पूरे ओंटेरियो में आपकी गाड़ी का आप कोटेशन दीजिएगा. आपके पास अगर गाड़ी की इंश्योरेंस ऑलरेडी है, जस्ट कंपेयर द प्राइस, यू विल एंड अप सेविंग हंड्रेड्स. और उनका नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 6472035546. अपनी बेल्ट्स को बांध लें, फिर माजी जमा लें, फिर मेरी गलती निकालनी है. फैसन योर सीट बेल्ट्स एंड वी आर टेकिंग ऑफ फॉर पाकिस्तान. वहां से होंगे हमारे साथ जनाब वसतुल्लाह खान.
जनाब मोहतरमा,
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंगी है, क्योंकि तुसी उस शख्स ना लड़ रहे होंगे हो जिसना थोड़ा घर परिवार ते थोड़े बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते थोड़े हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000.
शाह जी रेक्सडेल हुंदे पे लेनी हो सोनाटा एलेंट्रा या फिर 200 सेंटा पे, जल्दी से शाह अहमद को अभी फोन मिला लो रे, क्योंकि शाह जी अब रेक्सडेल हुंदे पे.
कारों के जादूगर शाह अहमद अब रेक्सडेल हुंडे पर है और शाह जी से बेटर प्राइस और सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी. कॉल करो 416-817-2720,
क्योंकि शाह जी रेक्सडेल हुंडे पे.
साहब मैं आपको लेकर चलती हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आई थैंक हिम वेरी मच. बड़े लोग, मैंने आपको एक दिन एक वाक्य शेयर भी किया था कि अयूब खान साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनसे एक बार मुलाकात हुई. आई वॉज वेरी, हम तो किसी 10वीं से भी छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने, मतलब ये जो बड़े लोग हैं उनको पहचानने की आदत होती है. जितना छोटा इंसान होता है ना, वो इग्नोर करने में बड़ा माहिर हुआ करता है. बहुत खूबसूरत इंसान वसतुल्लाह खान, मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ. जब मैंने उनको कॉल किया कि हम कुछ अरसा आपके साथ बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से दूर रहते हुए दिल परेशान भी होता है, खफा भी होता है, इज़ अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, वेरी न्यूट्रल पर्सन. और एक जर्नलिस्ट की निगाह से ज़ाहिर है, इतने बड़े इदारे के साथ भी आप हैं, पाकिस्तान में डॉन के साथ आप वाबस्ता हैं, तो उस इंसान का जो एक्सपोजर ही डिफरेंट है. जनाब वसतुल्लाह खान साहब मेरे साथ हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
वालेकुम सलाम.
सर आप कितने अच्छे हैं, मतलब खुश हैं आप, मतलब मैं और आप तो चल ही नहीं सकते. आप बहुत सीरियस हैं, मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ.
मैं कितना सीरियस हूँ ये तो मुझे कोई बता दे.
सर पाकिस्तान की सूरत हाल से थोड़ा दिल गमगीन भी होता है. मैं आपसे आज दो एक टॉपिक्स पे, और मैंने रिक्वेस्ट अपने तमाम लिस्नर से किया है कि अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा. हम उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, हम आपके साथ इस नशिस्त में मैक्सिमम हासिल करना चाहते हैं. दो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, एक तो पॉलिटिकल लिहाज से मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, और एक इंटरनेशनली भी आपकी नज़र बड़ी गहरी है. ये जो औरत मार्च का एक सिलसिला हुआ है, उस हवाले से अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ी सी हमें वो भी आगाही दीजिए. بتائیے گا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, یہ کون سی این جی اوز ہیں. مگر پہلے ہم گورنمنٹ کے لحاظ سے سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, الیکشن جو سینٹ کا ہوا اس کے بعد سے گورنمنٹ کی کیا صورتحال, پولیٹیکل سیناریو.
ہاں ابھی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے سینٹ کا, کہ جو آدھے سینیٹرز ہیں تقریباً وہ الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن اب مرحلہ درپیش ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا, ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کا, اور پھر قائد حزب اختلاف کون ہوگا سینٹ میں وہ ہے. تو دونوں طرف سے جو ہیں کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں, پی ٹی آئی نے تو وہی صادق سنجرانی صاحب کو ظاہر ہے ریپیٹ کیا ہے, اور بقول شیخ رشید احمد جو کہ پنڈی کی سیٹ سے ہوتے ہیں اور ان کو بظام خود وہ پنڈی کے کان اور آنکھ جو ہیں خود کو کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہیں, وہ ریاست کے امیدوار ہیں. ظاہر ذہین لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس ریاست سے کیا مراد ہے شیخ رشید کی. دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کا جو کی جو جیت ہے وہ آج اس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے روبرو, کہ یہ جیت کو کل عدم قرار دیا جائے, نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو وکیل تھے پی ٹی آئی کی طرف سے علی ظفر صاحب, وہ صرف 3 ویڈیوز لے کے چلے گئے جو کہ انہوں نے ٹیلی ویژن چینل سے حاصل کی تھی. تو الیکشن کمیشن کے ججز نے کہا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فروش ہیں ان کے نام کہاں ہیں, ہم کس کے خلاف کیس جو ہے کریں. صرف ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق کے خلاف کیس سنے دوسرا نہ آئے. تو وہ پھر علی ظفر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, تو سپریم کورٹ نے وہ درخواست ڈسمس کر دیا اور ان سے کہا ہے کہ نئی درخواست دیں. لیکن پرسوں ظاہر ہے کہ چیئرمین کا الیکشن ہونے والا ہے, صورتحال جو ہے تقریباً جیسے امریکن سینٹ میں ہوتا ہے نا کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں نیک ٹو نیک ہوتے ہیں, تو اس دفعہ سینٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی نیک ٹو نیک ہیں. اپوزیشن کی اس وقت ہیں 100 کے ہاؤس میں 52 نشستیں, اور پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی ہیں 47 یا 48 نشستیں, یعنی 3-4 ووٹوں کا فرق ہے. تو اب حکومتی جو حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک تو ہم گیم کے اصولوں کے حساب سے کھیل رہے تھے کہ جی ہائی مورل گراؤنڈ پہ, لیکن اب ہم بھی وہی حرکتیں کریں گے بقول وزیر اطلاعات شبلی فراز کے, جو کہ اپوزیشن نے انٹروڈیوس کرائی ہیں. ان کی مراد ظاہر ہے پیسے سے ہے, باقی چیزوں سے ہے. تو اب یہ جو الیکشن اگر اسی طرح ہوتا ہے تو پھر حزب اختلاف اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہتھ کنڈوں کے اعتبار سے. اگلے 48 گھنٹے کے بعد نتیجہ کا پتہ چل جائے گا. اگر تو صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں کم ووٹوں کے باوجود, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی وہی راستہ چنا جس کا الزام وہ اپوزیشن پہ لگاتی رہی, اور اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے گی کہ اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نے واقعی نیوٹرل رول پلے کیا ہے اور کھلاڑیوں کو آپس میں لڑنے دیا ہے.
بہت شکریہ سر. آج جب آپ نے جب مجھے یہ ذکر کیا نا کہ جو گورنمنٹ کا وکیل تھا وہ 3 ویڈیوز لے کے وہاں پہ پہنچ گیا, تو میرا پہ اختیار گیا کہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے, چاہے وہ اس گورنمنٹ کی ہو چاہے پریویس گورنمنٹس کی ہو, انٹرنیشنل کورٹس میں بھی جب ہماری اپیئرنس ہوتی ہے تو ہم ویل پریپیئر ہو کے نہیں جاتے. اس کی کیا وجہ, جو بھی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, نواب آف حیدرآباد کی رقم 306 کروڑ روپیہ جو انگلینڈ میں پھنسا ہوا تھا, پاکستان کبھی بھی اپنے کیس اس کو پراپر طریقے سے تیار کر کے ہی نہ جا سکا, انڈیا نے بہترین ریپرزنٹیشن کی, دے ون دیٹ کیس. آپ چارج شیٹ کے معاملے کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ آپ وہ ریکوڈک کا معاملہ اگر کر لیں تو وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی پاکستان کو فائن ہوا کہ پاکستان کے وکلا انٹرنیشنلی بھی جب ہمارے کیسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر نیور ویل پریپیئرڈ. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می پلیز.
ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں بیرونی ممالک کے کیسوں پہ, لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے جیسے ریکو دیک کا ایشو ہوا اس میں ہم سالسی ہار گئے. اس کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ جو ڈیمز کا مسئلہ ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وولر براج وغیرہ, वो हार गए। इसके अलावा ये जो अभी नैब के साथ जिस बरतानवी कंपनी का माहिदा हुआ था,
चार्जशीट मुसवी साहब की कंपनी वाले,
तो बजाय इसके कि ब्रॉडशीट वाले रिकवर करके नैब को पैसा देते, उल्टा नैब से पैसा वसूल कर लिया, और वो भी एक जाली ब्रॉडशीट ने और एक असली वाली ने, तो हम इस मामले में जो है भोले बन जाते हैं। वकला हमारे साथ अलबत्ता पूरी दुनिया के वो खुशी खुशी काम करते हैं कि इन्होंने हरना तो है लेकिन साढ़े डॉलर जड़े ने बन जाए।
वेरी सैड। आपने तो इसका भी जिक्र किया, अगर मैं गलत हूं बिल्कुल जी, डैम्स के मामले के बीच में आप कश्मीर के मामले के बीच में आ जाएं, कहीं भी हमारे वकला जो हमारी गवर्नमेंट को और हमारे मौकफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कभी भी वो वेल प्रिपेयर होके नहीं गए। आई डोंट नो वहां पे भी जो वकील है उसकी नामजदगी सिफारशी हो जाती है। सर वो 306 करोड़ जो निजाम ऑफ हैदराबाद ने दिया था 1948 की, मेरा ख्याल है ये बात है जी, वो भी पाकिस्तान मुकदमा हार गया वो वाला भी।
हाँ जी वो भी हार गया। मतलब देखें कोई एक मिसाल हम नहीं लेते, हम अगर देख फर्ज करें कि हमने 10 मुकदमे लड़ने की कोशिश की है तो 8 तो हम हार ही गए हैं या 0-0 पे छूटे हैं। तो अब होता यह है कि गैर मुल्की वकील हैं वो तो पर आवर चार्ज करते हैं ना, आपके यहाँ अमेरिका या बरतानिया में, तो वो तो चाहते हैं कि वो एक मिसाल है कि वकील कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो मुकदमा है वो जल्दी निमट जाए। उस डॉक्टर की तरह जिसके पास एक कसाई का बच्चा आ गया था और उसके पैर में हड्डी चुभी हुई थी, तो डॉक्टर जो है उस पर सिर्फ पट्टी बांध देता था। एक दिन डॉक्टर नहीं था तो उसका बेटा बैठा हुआ था, उसने जनाब देखा तो कसाई के जो बच्चा है उसके पैर से हड्डी निकाल दी और पट्टी बांध दी। अगले दिन कसाई नहीं आया तो डॉक्टर ने पूछा अपने बेटे से कि यार वो आज आया नहीं है, कल आया था? उसने कहा आया था, मैंने वो जो हड्डी चुभी हुई थी निकाल दी थी। कहने लगे पागल तूने क्या कर दिया, उसी हड्डी की वजह से तो वो रोजाना 1 किलो गोश्त फीस में दे रहा था।
क्या बात है, बड़ी तो सही बात आपने की जी,
एटीट्यूड हमारा यही है।
बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि जनाब आज उन्होंने जनाब जो फजल रहमान साहब है उनकी पार्टी को भी शायद गवर्नमेंट उन पर कोई बैन लगा दे, कुछ ऐसी भी खबरें आपकी नजर में होंगी?
नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि बैन लगा दे, क्यों लगा देगी बैन। और फिलहाल गवर्नमेंट जो है जिस तरह के क्राइसिस में फंसी हुई है वो इस तरह का एडवेंचर क्यों लेगी, बल्कि उन्होंने तो उल्टा उनके जो एक हैं सेनेट कैंडिडेट फजलुर रहमान के
जी,
उनको ऑफर किया है कि हम आपको डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है उस पर आपकी हिमायत करना चाहते हैं,
उसे इनकार कर दिया।
उन्होंने जाहिर है इनकार कर दिया है। और लेकिन अब मुझे हैरत यह है कि कल तक तो उन्हें वो मौलाना डीजल कह रहे थे और करप्ट लोगों का बादशाह कह रहे थे और उन्हीं की पार्टी को फिर ऑफर भी कर दिया, तो सियासत तो फिर इसी तरह होती है जाहिर।
बहुत जबरदस्त सर। सर इसके अलावा हमें पाकिस्तान के क्या इस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल आप क्या बताते हैं, क्योंकि इलेक्शन जब हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हासिल किया इमरान खान साहब ने, तो फैसल वाडा साहब ने बाहर आके कहा कि 178 या 179 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं, अंदर तो इतने वोट डालने वाले ही मौजूद नहीं थे, तो इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे?
है ये, इसकी छानबीन की जरूरत है कि 180 तो खुद हुकूमत क्लेम करती है कि उसे टोटल हिमायत हासिल है, तो 180 में से 178 जो हैं वो कैसे उस वक्त हाजिर थे जबकि डस्का की जो सीट है उस पर भी डिस्प्यूट है, वो भी खाली है, उसका भी जाहिर है मेंबर नहीं होगा, इसके अलावा और भी मेंबर जो हैं वो नहीं थे, तो ये इसकी तो छानबीन खैर होनी चाहिए। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि सियासी हालात क्या हैं, तो जाहिर है कि एक हुकूमत हिली तो है, जो पिछले 2-2.5 हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से हिली तो है, और अब देखना यह है कि 26 को जो लॉन्ग मार्च है और उससे पहले डस्का की सीट अगर पीटीआई जो क्लेम कर रही है कि वो जीत गई थी, अगर वहां भी वो हार जाती है और परसों सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जो है उसमें भी कोई अपसेट हो जाता है, तो फिर तो मामलात खासे शेकी हो जाएंगे और फिर तो ये है कि अगर ये फिर बजट भी पेश कर लें तो बड़ी बात होगी, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि वो जैसे कहते हैं ना चाइनीज टॉर्चर के जख्म लगाते जाओ लेकिन मारो नहीं, तो मुझे लगता है कि हिजब इख्तलाफ की यही स्ट्रेटजी लग रही है, इसलिए कि मामलात बज़ाहिर इतने बिगड़े हुए हैं पॉलिटिकल और इक्तसादी कि कोई भी अपने गले में नया वजीर आजम जो है वो हार नहीं डालना चाहेगा अनलेस के कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या कोई सेटअप जो है उसको थोड़ा सा उस पर हाथ हल्का रखा जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सैयद दिमाग शख्स इस सूरत हाल में वजीर आजम बनने की मुसीबत मोल लेगा अपोजिशन की तरफ से।
सर आपका तो इंटरनेशनल ताल्लुकात भी हैं, महंगाई के लिहाज से मैं बात करना चाह रही थी आज ही बल्कि इंटरनेशनली, आज बल्कि एक और अभी न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी है आपके, तो ज़ाहिर आप पाकिस्तान में हैं, सिंध यूनिवर्सिटी का एक जो स्टूडेंट है इसको कुछ दिन पहले उठा लिया गया था और सुना है कि पुलिस मुकाबले में उसकी डेथ हो गई है और स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, इसके बारे में कोई इनपुट देंगे हमें आप?
जी, एक तो जाहिर है कि ये है कि वो स्टूडेंट था और अल्लाह जाने उसे क्यों उठाया गया, एक महीने पहले उठाया गया लेकिन गिरफ्तारी उसकी दो दिन पहले की शो की गई, फिर उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, एक वर्जन तो ये है। पुलिस का ये कहना है कि वो एक जाहिर है इश्तिहारी मुलजिम था और मुख्तलिफ शहरों के थानों में उसके खिलाफ डकैतियों के और लूट मार के और कत्ल के पर्चे दर्ज थे। अब मसला यह है कि पुलिस को वाकई फिर भारी सबूतों के साथ सामने आना पड़ेगा कि जो वो कह रहे हैं वो गलत हैं, वरना आज तक तो यही होता है कि जो पुलिस मुकाबले हैं उनको मशकूक करार दिया जाता है और फिर हशअप करने के लिए इस तरह के झूठ दर झूठ बोले जाते हैं। सूरत हाल क्लियर नहीं है, अगले दो तीन दिन में मेरा ख्याल है ये क्लियर हो पाएगी तो पता चल जाएगा कि वो किस हद तक बेगुनाह था या नहीं था।
बहुत शुक्रिया सर आपका, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू ऐड ऑन?
नहीं, आप जो भी पूछे, आपने रिक्वेस्ट की थी लिसनर्स से कि अगर कोई उनके जहन में कोई बात हो।
सर आपसे बात करते हुए मैं टेलीफोन की तरफ ही नहीं देख सकी एक सेकंड, मैं आपका टाइम ज्यादा लेना नहीं चाहती। बिल्कुल साहब वसुतुल्लाह साहब, वो कहते हैं वसुतुल्लाह साहब 52 अकाउंट कैसे करते हैं, इसमें चार अरकान तो फाटा के हैं, इसहाक डार ने हलफ नहीं उठाया, और तफसील बताएंगे आप?
हाँ, कुछ इस तरह का है, लेकिन मसला ये कि ये छानबीन स्पीकर की बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी होती है कि स्पीकर ने वोट काउंट कैसे किए हैं, और वो जो स्टालिन से एक फिकरा मंसूब है कि ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि किस किस ने वोट डाला या नहीं डाला, अहमियत इस बात की है कि वोट काउंट किसने किए। तो इस बुनियाद पे ये तो अगर हिजब इख्तलाफ इस पे ऑब्जेक्शन करती है तो इस स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा उनके नाम, अब तो बहुत आसान है, होता ये था कि वो रजिस्टर में अपना नाम लिखवाते थे और गैलरी में चले जाते थे, तो 178 नाम तो वहाँ रजिस्टर पे चढ़े हुए होंगे, तो वो रिलीज कर देने चाहिए हुकूमत को ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो जाए।
यही तो फैसल वाडा ने बाहर निकलते ही, उन्होंने अपना वोट जाया किया, उन्होंने बाहर निकलते ही ये लफ्ज कहा कि अंदर 178 तो लोग भी नहीं थे, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए वो रजिस्टर पेश कर दें। तो इसमें उन्होंने कहा चार अरकान फाटा के, इसहाक डार ने हलफ नहीं उठाया, वसुतुल्लाह साहब बहरहाल आपने बताया, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए हमारे टोरंटो के बहुत खूबसूरत इंसान हैं, मैं बल्कि अगले प्रोग्राम में वसुतुल्लाह खान साहब आपकी उनकी मुलाकात कराऊंगी, डॉक्टर मुर्ज़ा हैदर। डॉक्टर मुर्ज़ा हैदर यहाँ पर हमारे टोरंटो के तमाम बड़े अखबारों में लिखते हैं और रॉयसन यूनिवर्सिटी के साथ आप मुंसलिक हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ आप मुंसलिक हैं। डॉक्टर मुर्ज़ा हैदर, उन्होंने कहा आई एम अ बिग फैन ऑफ वसुतुल्लाह साहब, और डॉन में, आपके डॉन में भी वो लिखते हैं, रेकॉर्डिक के बारे में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे भी हैं, और आपके लिए उन्होंने नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया है।
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت محبت.
بہت ہی خوبصورت انسان ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر, بلکہ ان کی تو کوشش ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا الحاق ہو یہاں کی یونیورسٹیز سے, اور آپ کے میرے پاکستان سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں کے اپنے تعلیم اور سیٹ اپ یہاں پہ کر سکیں. وسط اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس.
تھینک یو سو مچ.
تھینک یو. پاکستان زندہ باد. جیسے آپ ہیں نا ویسے ہی یہ نیورو سرجن ہے, آصف بشیر ان کا نام ہے. دیجیے صاحب ایک وسط اللہ خان کے بعد, کہتے ہیں کہ وسط اللہ خان ابھی بھی بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا, اب بڑی نیوٹرل بات چیت کرتے ہیں, ان کی سب سے خوبصورت بات یہ. تو کہتے ہیں کہ یہ یہیں پہ انگلینڈ میں ہی رہائش پذیر تھے, پھر انہوں نے اپنی خواہش کے ساتھ انگلینڈ کو چھوڑا, یس, اور یہ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا. انتخاب کس گراؤنڈ کے اوپر کیا کہ مجھے وہ گھر یاد آتا ہے, مجھے وہ پان والا یاد آتا ہے, مجھے وہ کارنر کی دکان یاد آتی ہے, اور اس گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے انگلینڈ کو چھوڑا اور جا کے کراچی میں آباد ہو گئے. اسی طرح سے ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ایک نیورو سرجن ہے, میں ذاتی طور پہ بھی ایک نیفرون سرجن کو جانتی ہوں جو گردے کی نیفرونز کا یعنی سرجری کے لیے, مجھے یاد ہے یہ الائڈ بینک کے ایک ہوا کرتے ہوتے تھے, ان کے بیٹے تھے اور وٹو فیملی سے انہوں نے پھر شادی کی تھی. انگلینڈ سے انہوں نے اپنی اسپیشلائز, کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل کیا تھا انگلینڈ, امریکہ سے پھر انہوں نے اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد الٹیمیٹلی جو کڈنی کلینک لاہور کا نا یہ وہاں منتقل ہو گئے تھے, وٹو فیملی میں انہوں نے شادی کی تھی. یہ نیورو سرجن آصف بشیر ان کا نام ہے, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد ہی پریفر ٹو لیو ان پاکستان. آصف انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ایپیلپسی جو ہے نا اس کے علاج کا پیچیدہ آپریشن کیا, یو نو واٹ از ایپیلپسی, اور نیورو سرجن ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ ڈاکٹر آصف کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں یہ آپریشن گزشتہ کئی برسوں سے کامیابی کے ساتھ, اینڈ یو نو واٹ از نیورو سرجنز ویلیو ہیئر ان امریکا. اور نیورو سرجن تھے, اسپیشلائزڈ ڈاکٹر تھے, صرف جنرل پریکٹیشنر نہیں تھے, اور وہ کہتے ہیں یہ سرجریز جو تھی امریکہ میں کر رہے تھے. میں اور میری بیوی دونوں نیورو فزیشین ہیں, وائف بھی نیورو فزیشین ہے, معروف بشیر وہ سب جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں متعارف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پورا کا پورا اپنا اکوپمنٹ لے کے پاکستان موو ہوئے ہیں, چند برسوں سے پاکستان میں مقیم ہیں, عملی طور پر نجی سرکاری شعبے میں پریکٹس کر رہے ہیں. آپریشن کے لیے دو بچوں کا انتخاب کیا, جن میں ایک کا تعلق خیبر پختونخوا اور دوسرے کا بلوچستان. آئی پرسنلی نو ڈاکٹرز, وہاں پر ایک کلینک تھا جس میں میرا اپنا ڈاکٹر بھی پاکستان سے ہے, آئی جسٹ اگر میری کوئی علاج ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے آئی پریفر ٹو گیٹ اٹ ڈن ان پاکستان. تو آپ مجھے غلط بھی سمجھ سکتے ہیں, بٹ دس از می اینڈ دس از می. اب وہ ڈاکٹر آصف کہتے ہیں کہ مرگی یعنی یہ اپیلیپسی جو ہے یہ آپریشن صرف ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, تین گھنٹے کے بعد ہم مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں. اس میں گردن میں شارک کے اوپر ایک ڈیوائس کو لگایا جاتا ہے جسے چھاتی کے اوپر ایک چھوٹی بیٹری کے ساتھ لگا کر منسلک, جیسے وہ کیا جو لگاتے ہیں دل کے لیے پیس میکر جیسے لگاتے ہیں, تو یہ شارک کے ساتھ ایک ڈیوائس لگائی جاتی ہے, اس کو پھر یہاں سینے کے اوپر اس جگہ پہ کر دیا جاتا ہے, اور جب الیکٹرول جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو دماغ کو بھی ایکٹیو کرتا ہے. مرگی کے مریضوں کے دورے کم ہو جاتے ہیں یا بالکل ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس آپریشن کے بعد ڈیوائس کو آن نہیں کیا گیا, ایسا دو ہفتوں کے بعد کیا جائے گا. آپریشن میں کامیابی کے چانسز پر انہوں نے دو بچوں کا. آئی پرسنلی نو ڈاکٹرز جو پاکستان میں, آف کورس ان کی فیسیں بہت ساری ہیں, مگر ایک کلینک ہے, اور یہ کلینک ہے بھی کہاں پہ, ڈیفینس کے پل کے اندر کی طرف, اس کو جگہ کو کیا نام لیا جاتا ہے, وہی مین روڈ جو ہے وہاں پہ, میں بھی آپ کو اس کا نام بھی بتاتی ہوں. تو یہ ڈاکٹرز جو ہیں جن کی ایک وقت کی جو پرائیویٹ کلینکس میں جو لوگ جاتے ہیں, ڈاکٹر کی جو فیس ہے وہ 3,000 سے 5,000 کے درمیان اس کی فیس ہوتی ہے, مگر ہفتے میں ایک دن 3-4 گھنٹے کے لیے یہ ان فری کلینکس میں آ کے بیٹھتے ہیں. آئی پرسنلی نو 2 یا 3 ڈاکٹرز کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں جو آ کے ان کلینکس میں بیٹھتے ہیں, اینڈ دے فری, ایبسولیوٹلی فار فری لوگوں کو آ کے چیک کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں. اور وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں, میرا اپنا نیفیو وہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں پہ, اب تو خیر وہ گلگت چلا گیا, میرا اب اس دفعہ وہاں پہ جانے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا. تو وہاں پر اس کلینک کو ایک کرنل صاحب ہیں اور دوائیاں بالکل مفت دیتے ہیں، بے شمار لوگ ان دوائیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز آ کے اس کلینک میں آ کے بیٹھتے ہیں، دو تین گھنٹے آ کے بیٹھتے ہیں اور رحیل اللہ علاج کرتے ہیں. آئی پرسنلی نو دیٹ. اب یہ جو ڈاکٹر آصف ہیں یہ امریکہ میں نیورو سرجن تھے، ان کی بیوی نیورو سرجن تھی، مگر ہی پریفر ٹو سرو ان پاکستان اپنے اکوپمنٹ کے. مجھے احساس ہے کہ بے شمار لوگ، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو گالی کون دیتا ہے؟ وہ چھوٹا آدمی، وہ جو خود پاکستان سے بینیفٹ لے کے نکلا ہوا ہوتا ہے. مگر جو لوگ پاکستان کے ڈونرز ہیں وہ ہر لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد کے میڈیکل ڈائریکٹر، انہوں نے کہا کہ مرغی کے پہلے کامیاب آپریشن کے بعد ملک میں اس مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہو جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ دس مین، اے ینگ مین، اے ونڈرفل مین، ہی موو ٹو پاکستان الانگ ود ہز وائف. یہ جو دو بچوں کا، خیبر پختونخوا کے بچوں کا، انہوں نے فری علاج بھی کیا. آف کورس جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو پے کرنا بھی چاہیے، مگر جو لوگ نہیں افورڈ کرتے، اگر ان میں سے 100% کو تو اللہ ہی خوش کر سکتا ہے، اگر ان میں سے 10% کا بھی علاج یا 5% کا بھی علاج مفت ہو جاتا ہے تو دیٹ از اے بگ ڈیل. یہ پاکستان میں دستیاب، پہلے اس سے پہلے یہ دستیاب نہیں تھی. اگر ایپیلپسی کا علاج کرانا ہوتا تو باہر کے ملک میں جانا پڑتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا کہ امریکہ میں ایک گھنٹے کی پریکٹس پاکستان کی ماہانہ تنخواہ جتنی تھی، یعنی ایک گھنٹے کی جو وہ امریکہ میں پریکٹس کرتے تھے وہ اتنا پیسہ بناتے تھے جتنا وہ ایک مہینے میں بھی نہیں بنا. دس از ہز لو فار دا کنٹری. انہوں نے کہا ان کا تعلق لاہور سے ہے اور دنیا کے جانے پہچانے نیوروس اور اسپائن سرجن ہیں، اور ان کے بہت سارے ریسرچ پیپر بھی چھپ چکے ہیں. 1995 میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی. والد بھی ان کے ڈاکٹر بشیر احمد پاکستان کے، ابتدا ان کے والد بھی نیورو سرجن تھے اور اپنے والد سے متاثر ہو کے ڈاکٹر آصف بھی نیورو سرجری کے شعبے سے ہی منسلک ہوئے. لاہور میں خدمات انجام دینے کے بعد امریکہ چلے گئے. انہوں نے نیورو اور اسپائن سرجری کی تربیت حاصل کی، یعنی اسپیشلائزیشن کی، اور اس کے بعد وہاں پہ یہاں پہ بلکہ پڑھاتے بھی تھے اور تربیت بھی دیتے تھے. بہرحال ان کی وائف جو ہیں ماروخ بشیر، وہ بھی نیورو فزیشین ہیں. دونوں نے طویل عرصے تک امریکہ میں اپنی پریکٹس کی، لیکن چند سال پہلے انہوں نے پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا. باقاعدہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے کے بعد 2017 میں محکمہ صحت پنجاب میں شمولیت اختیار کی. اب جو لوگ تڑپ رکھتے ہوں گے، ضرور کوئی واقف ہوگا تبھی تو پھر یہ چلے گئے نا. اوہو، وہ لوگ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ یہی کہیں گے. مگر صاحب دنیا میں ابھی میں نے فضلت اللہ خان کے بارے میں آپ کو بتایا، ابھی میں نے ان کے بارے میں بتایا. آف کورس ڈاکٹر عبد القدیر خان از آلسو اندر اگزامپل. ان کی بیوی بھی فارنر ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے آرام تو ہے نا ان ممالک کے بیچ میں، but he preferred to live in Pakistan. Not everybody is hero. He's a hero. Why he's a hero? Because ظاہر ہے انہوں نے اس وقت بھی وہ ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر لے لی. And he is doing good for Pakistan. پاکستان میں ان کا بلکہ ایک انہوں نے کلینک شروع کیا ہے. ابھی ریسنٹلی جس دن میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے اتنے پیارے لگے، کہتے ایسے میں فون پہ ان کو دیکھ رہی تھی، میں ان سے بات کر رہی تھی تو مجھے کہتے بٹن دباؤ اور اپنے ساتھ میری تصویر اتار لو. میں نے کہا سر مجھے تصویر اتارنے کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے دل میں بستے ہیں. کہتے نہیں مجھے پتا چلا اس کا بٹن دباؤ فون کا تو واٹس ایپ پہ جو کال آ رہی ہوتی ہے آپ کی تصویر. آئی ڈونٹ نیڈ اٹ ڈاکٹر صاحب. تو ہیروز آر ہیرو. بہرحال ڈاکٹر آصف کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کیا، جب میں نے فیصلہ کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا ماں سوائے کہ اس کی میں نے اپنے لیے امریکہ میں پریکٹس کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد میں وہاں پر سرجری کر سکوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں متعارف ہونے والی جدید ٹیکنالوجی، یس 3 مہینے کے بعد وہ امریکہ آیا کریں گے، ٹیکنالوجی اپنا آپریشنز بھی کیا کریں گے، وہ اپنا لائسنس بھی کیری کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے بھی پہ ہاتھ رکھیں گے، اپنے ریسرچ پیپرز پہ بھی ہاتھ رکھیں گے. اور ان کی وائف جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، ذاتی زندگی کے علاوہ پیشہ ورانہ مسائل بھی تھے. اور بٹ آئی ایم ہیپی، وی آر ہیپی.
ایک اور بھی ڈاکٹر سفر جو ہمارے پاس آیا کرتے تھے نا یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے، وہ بھی وہاں پر جا کے اپنی
ڈاکٹر عامر،
یس
ڈاکٹر عامر پاکستان کے تمام ٹیلی ویژنز کے اوپر جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جب بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، راشد بھائی کے ریفرنس سے وہ پہلی بار یہاں پہ آئے تھے. بہرحال بہت شکریہ. چند ایک اسپانسرز کا پیغام، ویلکم بیک اسٹوڈیو کا نمبر 416-602-1778. بھائی بہت شکریہ آپ تمام کا. اونٹیریو گورنمنٹ کا بھی یہ پیغام ہے کہ اسمال بزنسز کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے ایک عورت کا، خاتون کا ایک دفعہ مجھے کال آئی کہ بچے کا کوئی کام تھا اور جی فنڈ ریز کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب موقع دیتا ہے تو آپ بھی اپنا دل کھلا رکھا کریں دوسروں کے لیے. وی شوڈ ناٹ اونلی ایکسپیکٹ دیٹ ادرز شوڈ ہیلپ می، ہمیں بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ برے حالات اور برے وقت کا کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا. بائی دا وے میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اسمال بزنسز، دس از اے ٹف ٹائم، اور آپ کو پتا ہے ریسٹورینٹس کے اوپر کتنا ٹف ٹائم ہے، تو گیو دیم بزنس. آپ اوبر ایٹس، ڈور ڈیش، یا جسٹ آرڈر کر کے یو کین جسٹ پک اٹ اپ، یا اور آپ یقین کریں گاڑی میں بیٹھ کے کھا کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کھائیے گا. جسٹ تھنک اباؤٹ پاکستان. ہمارے اسمال بزنسز کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. گرلن ہٹ کا میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں. عمران بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں آف کورس، بٹ یو نو اسٹے سیف. اپنے ماسک اینڈ اپنی تمام پریکاشنری میئرز دیتے ہوئے گرلن ہٹ پہ تشریف لے کے جائیں. 1935 ڈیو روڈ کے اوپر ہے، مسساگا میں. مسساگا اینڈ برامپٹن کا سنگ منت ہے. 9054058383 ان کا نمبر ہے. ہمارے آج کے پروگرام کو کوکب جاوید صاحب نے بھی تعاون دیا. کوکب جاوید آئی نو ہم فار 14-15 ایئرز. اس سے پہلے ڈائریکٹ بینک کے ساتھ لنک تھے، بٹ ناؤ ہی از ورکنگ ود دا پرائیویٹ لینڈرز اینڈ آل دا بینکس کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ہورائزن تھوڑا بڑا کیا. اینڈ ہی سیز کہ ایون اگر آپ نے کوئی ایگریکلچر لینڈ لینی ہے، جسٹ اے پیس آف لینڈ وداؤٹ اینی اسٹرکچر آن اٹ، I will get you insurance mortgage for that as well. اور ان کا نمبر آپ لے لیجیے گا، 416-454-6065 ان کا نمبر ہے. ایک گیت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. ماجی بھائی اسپانسر کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. یہ ایک بڑا پیارا گیت تھا، مجھے یاد ہے لاہور میں نا ایک ادارہ تھا فاؤنٹین ہاؤس. فاؤنٹین ہاؤس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا تھریش ہولڈ بٹوین مینٹل ہاسپٹل اینڈ دا کمیونٹی. یعنی مینٹل ہاسپٹل سے یا کوئی بیمار لوگ جب ہوتے تھے تو تھریش ہولڈ فاؤنٹین ہاؤس. بہت خوبصورت ادارہ تھا، ہم نے اپنی اسٹوڈنٹ ہوڈ میں وزٹ کیا. تو مجھے یاد ہے ایم اے کالج کے ایک اسٹوڈنٹ سے میری وہاں پہ ملاقات ہوئی. بہت خوبصورت وہ گاتا تھا، بہت خوبصورت گاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ظاہر تب ہم بھی ینگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے اس کی آوازیں بھی ریکارڈ کیں اور پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں پلانس تھے، بٹ نتھنگ کیم ٹرو. تو آج میں نے اس کو دیکھا، جو لوگ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے گا. اینڈ آئی واز سیڈ، یس، ٹورنٹو میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا کچن نہیں چل رہا، جن کے بچے نہیں کہا مان رہے. زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے دل بھر گیا. وہ کہتے ہیں نا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اس آدمی نے اپنا جو گٹار کیسے بنایا ہے کہ ایک ڈنڈے کے ساتھ اس نے دو سٹرنگز لگائیں اور ایک ڈالڈے کا ڈبا نیچے لگا کے اس سے اس نے آواز پیدا کی ہے. سماعت فرمائیے. زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے دل بھر گیا، میں یہاں جیتے جی مر گیا. سماعت فرمائیے.
رات کٹتی نہیں دن گزرتا نہیں، رات کٹتی نہیں دن گزرتا نہیں، زخم ایسا دیا ہے ایک بھرتا نہیں، آنکھ ویران ہے دل پریشان ہے، غم کا سامان ہے. جیسا جادو کوئی کر گیا زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے دل بھر گیا، میں یہاں جیتے دی مر گیا، زندگی دینے والے سن. بے خطا تم نے ہم سے خوشی چھین لی، بے
देखता तूने हमसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले
और कसम खुदा की देख
दिल में आरफा जी इसके इस शख्स के दिल से आवाज निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि
मैं कभी सोचती हूँ लविया आपकी बांट क्यों इतनी निराली है, और मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि इंसान आज से भी डरता है, तो लविया आपकी दुनिया ऐसी है, आप क्यों दुनिया में इतनी तफरीक आपने रखी हुई है, सैड, जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया, इस शख्स ने अपना इंस्ट्रूमेंट जैसे बनाया, किस कदर खूबसूरत नौजवान, मैं उसकी शक्ल देख रही थी, इतनी खूबसूरत उसकी आंखें, इतना खूबसूरत, पता नहीं कौन से नामसाद हालात थे कि वो अपनी तालीम ना मुकम्मल कर सका, और वैसे भी लड़कों का तो अल्लाह ही पनाह है, मुझे याद है जब फाउंटेन हाउस हम गए ना, तो जिस शख्स का मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर हिज फेस, तो हम एक वो रिसर्च के सिलसिले में ही वहां पर हमें जाने का इत्तफाक हुआ था, तो हमारी साइकोलॉजी की प्रोफेसर भी हमारे साथ थी, तो जब हम वहां पे गए ना, तो ये जो जितने लोग थे फाउंटेन हाउस में, उनको बाकायदा कम्युनिटी में एडजस्ट होने के तरीकाकार, जिंदगी के हुनर सिखाए जाने का बड़ा खूबसूरत इदारा है पाकिस्तान का, और उनको आर्ट एंड फन भी सिखाया जाता है, ताकि अगर ये लोग दोबारा माशरे में वापस जाएं तो ये किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं। तो ये जिस खास शख्स का मैं तस्करा कर रही हूँ, हमने इसकी वीडियोज इसकी टेप्स हमारे पास थी, तो इसका अलमिया क्या था, इसको इश्क हो गया था किसी लड़की से, ठीक है, और उस इश्क ने इस लड़के को तो फाउंटेन हाउस में पहुंचा दिया, और लड़की की शादी हो गई होगी, इसीलिए तो कहते 56, अगर आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का भी कर लेना, कहते हैं कि 56% लड़कियां हैं यूनिवर्सिटीज में, 44% लड़के हैं, तो बॉयज दे आर नॉट सीरियस इन देयर लाइफ, इसकी क्या वजह है आई डोंट नो, बल्कि मैं चाहूंगी कि एक दिन यूनिवर्सिटी वालों से इस पे प्रोग्राम आप की खिदमत में पेश करूंगी। एनीवेज, बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, जिनके तहत रिजूना का जिक्र करती हूँ, रिजूना, ओह रिजूना का इलाज जब मैं जिक्र कर रही हूँ, आज मुझे एक डॉक्टर साहिबा की कॉल मिली, आपको पता है कि कनाडा में एक नया लॉ आ रहा है, या डॉक्टर्स के ऊपर एक कंपल्शन आ रही है, इससे पहले ना डॉक्टर्स अपनी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ बात कर बाज़ औक़ात प्रिस्क्राइब कर दिया करते थे कि आप ये ऐसे, मेरे नोटिस में तो ऐसा नहीं आया, मगर मुझे मुजफ्फर के जमाने में मुझे याद है डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आयुर्वेदा आप ये खा लें, मगर वो तो पर्सनल टर्म्स के ऊपर कहा जाता है। 15 मार्च से मेरा ख्याल है, ये मैं प्रोग्राम एक डॉक्टर साहिबा के साथ ही करूंगी, डॉक्टर अम्बरीन यही रेक्सडेल हॉस्पिटल में हुआ करती होती हैं, तो डॉक्टर अम्बरीन का कंसर्न है कि कोई डॉक्टर जो है वो अपनी किसी को भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, या उनको इवन एडवाइस में भी नहीं कह सकेगा कि आप रेमेडीज ये वाली इस्तेमाल करें,
मगर ये दे आर ऑल अप्रूव्ड बाय द हेल्थ कैनेडा।
नो, अब डॉक्टर्स इससे पहले ये बात कर लेते थे ना, बट नाउ फ्रॉम द 15th मार्च ऑनवर्ड दे वॉन्ट बी, ये बल्कि मुझे उनका जब मैसेज भी आया, मैं आपके साथ करूंगी, आई विल डू दिस प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये तब्दीली या ये रद्दोबदल ना आए, तो आप अपने इलाके के मेंबर पार्लियामेंट से कैसे राबता करें, इसके बारे में उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया। 5352 लेट मी ट्राई दैट, यस उन्होंने मुझे यही लिखा है कि प्लीज साइन द पिटीशन नाउ टू प्रोटेक्ट योर राइट्स एज अ पेशेंट, योर ऑटोनॉमी एंड राइट्स टू चूज ट्रीटमेंट इज अंडर द threat by CPSO, College of Physicians and Surgeons of Ontario. Please sign the petition and stop this unconstitutional change which will affect you and your family adversely by taking away your charter rights. Ab ye kya right hai, wo ye kya hai ki main isko aapke saath share karungi aur meri koshish hogi ki main Dr. Sahiba ko hi aapke saath share karun. Online survey hai, software आप इसको देखिएगा. मैं बल्कि डॉक्टर मुर्सा को भी ये भेजने की change.org ये एक पिटीशन है जो 15 मार्च से अगर ये तब्दीली होती है तो और जो ऑन्टेरियो हेल्थ एंड सर्जन है वो ये कहते हैं एक्सेस टू कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एट रिस्क, यानी कॉम्प्लीमेंट्री और जो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, योर एक्सेस टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैम therapies also known as integrative medicine in Ontario is being put at risk by the College of Physicians and Surgeons of Ontario. If urgent action is not taken, critical service offered by the physicians will no longer be available to you. CAM includes a holistic approach to the health, often combined tools for both conventional medicine and natural remedies, therapies. और वो कहते हैं कि ये 15 मार्च के बाद जो ये सर्जन की जो क्लिन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद ये जो कन्वेंशनल थेरेपी है इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा, कोई नहीं होगा. मगर इसकी एक पिटीशन है, अगर आप उसको साइन